कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 12वीं पुस्तक दूसरा राजा नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को इन अध्ययनों से पाते जाइए। इससे पहले कि हम अध्ययन आरंभ करें, आइए सुन लेते हैं एक मधुर गीत।
जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार दे चलो, जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी आप सब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए रेडियो के निकट में बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन नए मित्रों का जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों पुराने नियम की पुस्तक में से दूसरे राजाओं की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमने देखा है कि किस रीति से परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है और नई शिक्षाओं को अपने लोगों को देता है। प्रिय मित्रों, आज आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसके 9 अध्याय और उसके 11 से 13 पद। दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 11 से 13 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब येहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है? वह बावला क्यों तेरे पास आया था? उसने उनसे कहा, तुमको मालूम होगा कि वह कौन है और उससे क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने कहा, उसने मुझसे कहा, तू बहुत, परंतु मतलब यह है कि यहोवा यूं कहता है कि मैं इसराइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब उन्होंने झट अपना अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। मेरे मित्रों, जब यह प्रकट हो गया कि येहू का राजा के लिए अभिषेक किया जा चुका है, तब सब में खलबली पैदा हो गई। उन्होंने तुरही फूंक दी और पुकार उठे, येहू राजा है। योराम तो इसराइल में रोग सया पर पड़ा हुआ था और अहज्या उसके पास था। अब इसराइल में क्या होगा, हम देखेंगे। येहू एराम की हत्या करता है। इसराइल में रोग सया पर लेटा योराम नहीं जानता था कि परमेश्वर ने उसे सिंहासन से हटाकर येहू का अभिषेक कर दिया है। वह इसराइल का राजा हो गया है। योराम के पास यहूदा का राजा अहज्या अभी उपस्थित है कि एक संतरी आकर कहता है, घुड़सवारों का दल आ रहा है। तब योराम दूध भेजकर पूछता है, शांति तो है, क्या तू अच्छा समाचार लाता है या बुरा? उसके प्रश्न का उत्तर देने की अपेक्षा योराम उसे अपने साथ हो लेने को कहता है। अब दूसरा संतरी योराम को समाचार देता है। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 20 पद में। तब पहरवे ने कहा, वह भी उनके पास पहुंचा तो था परंतु लौट कर नहीं आया। हांकना निमसी के पोते येहू का सा है, वह तो बौड़े की नाई हांकता है। मेरे प्रियो, येहू के पास भेजे गए दूत लौट कर नहीं आए क्योंकि येहू योराम को मिटाने आ रहा था। इस कारण योराम और अहज्या येहू से भेंट करने को निकले। तब हम आगे देखते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, येहू के देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजबेल छिनालपन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहाँ। ध्यान दीजिए, कोई भी देशभक्त राजमाता के लिए ऐसे शब्द काम में नहीं लेगा। योराम तुरंत समझ गया कि येहू ने विद्रोह किया है। तब हम पढ़ते हैं आगे दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 23 और 24 पद में, तब योराम राज फेर के और अहज्या से यह कहकर कि हे अहज्या विश्वासघात है भाग चल। तब येहू ने धनुष को कान तक खींचकर योराम के पखौड़े के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वह अपने रथ में झुककर गिर पड़ा। मेरे प्रियो, योराम ने भागना चाहा परंतु येहू ने तीर चलाकर उसका हृदय भेद दिया। ध्यान दीजिए कि यहाँ योराम को यहोराम कहा गया है। दोनों नामों का एक ही अर्थ है और वह नाम इसराइल और यहूदा के राजाओं के लिए काम में लिया गया है। हम देखते हैं येहू अहज्या को भी मार देता है। येहू योराम को समाप्त करने के बाद इसराइल आया और हमने देखा कि अहज्या योराम को देखने वहां आया था। वह दुष्ट की संगति में था, आहाब के कुटुंबी की। अहज्या गलत स्थान पर गलत समय पर था और इस कारण वह भी मारा जाएगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 27 पद में हम देखते हैं लिखा है, यह देखकर यहूदा का राजा अहज्या बारी के भवन के मार्ग से भाग चला और येहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथ ही में मार डालो। तो वह भी इबलाम के पास की गूर की चढ़ाई पर मारा गया और मगीदो तक भागकर मर गया। मेरे प्रियो, येहू के साथियों ने अहज्या का पीछा किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दूसरे राजाओं के पुस्तक 9 अध्याय उसके 28 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसके कर्मचारियों ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी। येहू द्वारा इजेबेल की हत्या को हम देखते हैं जो दूसरे राजाओं के पुस्तक उसके 9 अध्याय और 30 पद में लिखा है, जब येहू इसराइल को आया तब इजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। राजमाता की हत्या एक भयानक दृश्य है। वह एक खूनी नीच और दुष्ट स्त्री थी। वह सीदोन के राजा इतबाल की अति सुंदर पुत्री थी। संभवतः वह उस युग में इतिहास की सबसे सुंदर स्त्री थी। मित्रों, युवावस्था में उसकी तुलना ट्राय की हेलन और कैथरीन दे मेडिसी से की जा सकती है। आहाब और इजेबेल का विवाह उस वर्ष का सामाजिक समारोह रहा था। दोनों राज्यों में कुलीन जन वहां उपस्थित थे। राजसी अतिथियों की वह बड़ी संख्या में सहभागिता हुई थी। वह समारोह मर्यादा एवं सम्मान से पूर्ण था। यहाँ तक कि एलिया ने भी उस समारोह में दोष नहीं पाया। दोनों राज्यों की प्रजा ने उत्सव मनाया था और यह भी कहना अनुचित नहीं होगा कि नरक की दुष्ट आत्माएं भी उस उत्सव में सहभागी थी। वे आनंद से हंस रही थी और शैतान अति प्रसन्न था। परंतु स्वर्ग के द्वार पर पर्दा डाला गया था और स्वर्गदूत रो रहे थे। विवाह के घंटे बजने की अपेक्षा वहां मृत्यु का विषाद था। इस विवाह के प्रति स्वर्ग का एक दृष्टिकोण था। संसार ने तो सदा की तरह कुछ और भी देखा। स्वर्ग क्यों नकारात्मक है और संसार सकारात्मक? मेरे प्रियो, परमेश्वर मन को जांचता है। मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है। इजेबेल इतिहास में एक विशिष्ट स्त्री थी। वह योग्य थी, वह प्रभावशाली थी और उसका व्यक्तित्व प्रभुताशाली था। उसकी दुष्टता का प्रभाव 3 राज्यों पर पड़ा और उसके जीवन काल के परे तक रहा। उसका कुख्यात जीवन लोकोक्ति बन गया था। उसने इतिहास में विष की धारा प्रभावित कर दी थी। धर्मशास्त्र में उसका नाम प्रकाशित वाक्य तक फिर कभी नहीं लिया गया, अर्थात बाइबल के अंत तक। मेरे मित्रों, उसके नाम का अर्थ है कुमारी या अछूती। यह विकृतता और दुष्टता का अप्रत्यक्ष सुझाव है। वह संभवतः शिथिल और यवन रहित थी। परंतु वह फिर भी सुंदर एवं आकर्षक थी। बलिष्ठ पुरुष भी उसके मोह लेने वाले सौंदर्य के सामने झुक जाते थे। उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था, अहाब भी नहीं। वह अहाब को दबाकर उत्तरी राज्य पर राज्य करती थी। मेरे मित्रों, उसने बाल उपासना आरंभ की। वह 450 बाल के पुजारियों और 400 अस्तोरेत पुजारी राज्य में लाई। वह उतावली थी और उग्र स्वभाव की थी, खूंखार थी और क्रूर भी थी। उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की हत्या की और परिणाम स्वरूप परमेश्वर के जन भूमिगत हो गए। उसने अपनी पुत्री का विवाह दाऊद के परिवार में करने की सफल युक्ति की। अहाब की रानी होने के कारण अपने दीर्घकालीन राज्य में उसने अपनी ही इच्छा पूरी की। उसका विरोध करने का साहस एलिय्याह के अतिरिक्त और किसी ने नहीं किया। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि उसके अपराधों का लेखा नहीं है। उसके प्रभाव में रक्तपात आम बात थी। उसको रोकने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। कुछ समय तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि परमेश्वर ने मुंह छिपा लिया है, वह कुछ भी नहीं कर रहा है। मित्रों, अंत में वह अपने पाप की चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने नाबोत की हत्या करवा दी ताकि अहाब उसकी दाग की बारी पर कब्जा करने पाए। उसके काम निरंकुश और निरशंस हत्याएं थी, सब कायरता के काम थे और स्वर्ग कब तक चुप रहता। परमेश्वर का धीरज टूट गया था। उसने एलिय्याह को भेजा कि दंड की घोषणा करे। लेखा लेने का दिन आ गया था। पहले अहाब मारा गया और भविष्यवाणी के अनुसार कुत्तों ने उसका खून चाटा। अब इजेबेल की बारी थी। वह पैरों तले रौंदी जाएगी और कुत्ते उसका मांस खाएंगे। मित्रों, यहां तक कि उसके दफन के लिए कठिनाई से ही कुछ बचेगा। अहाब की मृत्यु हुए 14 वर्ष हो गए थे और इसमें संदेह नहीं कि इजेबेल ने भविष्यवाणी की पूर्ति पर विश्वास नहीं किया। उस पर कोई अंतर नहीं पड़ा था और वह परमेश्वर को चुनौती देती रही। वह अहाब की मृत्यु को एक दुर्घटना समझकर इज़राइल में ही रह रही थी। वह सोच रही थी कि वह तो बच जाएगी, उसे कोई हानि न होगी। परंतु परमेश्वर का नियम जीवन के प्रत्येक चौराहे पर स्पष्ट लिखा है, गलतियों की पत्री 6:7 में, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और हम लुका रचित सुसमाचार 6:38 में पढ़ते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, इतिहास का यह अध्याय सबसे अधिक घृणित और परम पीड़ानात्मक है। यह विमत्स्य रोंगटे खड़े कर देने वाला है, पैशाचिक और भयानक है, वरन अंतर्नाद से पूर्ण है। धर्मशास्त्र में यह सर्वाधिक घृणित एवं तुच्छ दृश्य है। इजेबेल राजमाता है। वह इज़राइल के राजमहल में सुख सुविधाओं में वास कर रही थी, परंतु एलिय्याह की भयंकर भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई थी। आकस्मात ही उत्तर दिशा से एक तीव्रगामी रथ आया। वह येहू का रथ था जो आवेश के साथ आ रहा था। उसने अब तक 2 राजाओं को घात किया था, यहूदा और इसराइल के राजाओं को। योराम उसी का पुत्र था। अब वह क्या करेगी? वह आंखों पर रंग लगाकर बाल संवार कर खिड़की से झांकती है। यह घमंडी स्त्री अब सोच रही थी कि वह अपने विरोधी को अपनी सुंदरता में फंसा लेगी। उसका पोता जो 22 वर्ष का था, अब वह जवान नहीं थी, वह बूढ़ी हो चली थी। कैसे भी सौंदर्य प्रसाधन इस बूढ़ी रानी को जवान नहीं बना सकता था। मेरे मित्रों, येहू को ऊपर के झरोखे से देखकर वह मीठे बोल बोलने लगी। आइए हम पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 उसके 31 में लिखा हुआ है, जब येहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? यहां पर ध्यान दीजिए, उसके कहने का अर्थ यह था कि क्या हम साथ बैठकर इस विषय में चर्चा नहीं कर सकते? ऊपर आकर मुझसे मिलो। हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 उसके 32-33 में, तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लोहू के कुछ छींटे भीत पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। मेरे मित्रों, यहू पर इजेबेल की मोहिनी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसमें ना तो दया थी और ना तरस। इजेबेल यहू पर प्रभाव नहीं डाल पाई, वह उसके मन को मोहित नहीं कर पाई। उसने तो इजेबेल का सम्मान भी नहीं किया। उसने आज्ञा दी, उसे नीचे फेंक दो। खोजों ने उसे नीचे गिरा दिया। वह पके हुए तरबूजे के समान फट गई। दुर्भाग्य की कथाओं में यह सर्वाधिक भयावह, भयानक और सजीव चित्रण है। हमोन के अनुसार इतिहास में इस घटना की तुलना में अन्य कोई अपमानजनक घटना नहीं हुई है। प्रथा के अनुसार तो राजमाता को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है, परंतु यहाँ पर इसके विपरीत हुआ। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 34 पद में पढ़ते हैं, तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। मेरे प्रियो, ऐसी निरशंस हत्या के बाद यहू कैसे खा पी सकता था? किसी ने कहा है, वह देहधारी शैतान था। वह एक अशिष्ट कठोर सैनिक था। उसमें दीन बंधुता नहीं थी। उसमें जो था वह केवल अपरिकृष्ट महत्वाकांक्षा थी। वह कैसा भी अपराध करने के पीछे नहीं हटता था, अर्थात पीछे नहीं रहता था। वह पूर्णतः भ्रष्ट और पतित था। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 35 से 37 पद में पढ़ते हैं, जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ ना पाया, सो उन्होंने लौटकर उसे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलियाह से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा और इजेबेल की लोत इज़राइल की भूमि पर खाद की नाई पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई न कहेगा यह इजेबेल है। मेरे प्रिय मित्रों, यहू ने इजेबेल को दफन करने के लिए दास भेजे तो कुत्ते तब तक उसकी देह खा चुके थे। कुत्तों को बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिला जो बहुत दिनों के बाद उन्होंने पाया, परंतु मेरे मित्रों, स्वर्ग में इस पर हंसा नहीं गया, न ही वहां दुख मनाया गया। संभवतः स्वर्ग में कहा जा रहा था कि जैसा प्रकाशित वाक्य में भविष्यद्वक्ता का उल्लेख है 19 अध्याय उसके 2 पद में, उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने एक बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया गया और उसने अपने दासों के लहू का बदला लिया। मेरे मित्रों, यजेबेल की भयानक मृत्यु एक बार फिर गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 पद का उदाहरण देती है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठंडों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्रिय मित्रों, और आपके जीवन में भी इस बात को झांकने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं। याद रखें कि आज जो हम बो रहे हैं उससे एक दिन मुझे और आपको काटना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार रहेंगे? यहाँ पर अध्याय 9 समाप्त होता है और हम देखेंगे अध्याय 10 में भी यहू के खूनी हाथों द्वारा आहाब के परिवार पर दंड की कहानी चल रही है। देखते हैं आहाब के घराने को दंड। दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1-3 पद में लिखा हुआ है, आहाब के तो 70 बेटे पोते शोमरोन में रहते थे, सो यहू ने शोमरोन में उन पुरियों के पास और जो इज़राइल के हाकिम थे और जो याहाब के लड़के वालों के पालने वाले थे, उनके पास पत्र लिखकर भेजे कि तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारे रथ और घोड़े भी हैं और तुम्हारे एक गढ़ वाला नगर और हथियार भी है, तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से जो सबसे अच्छा और योग्य हो उसको छांटकर उसके पिता की गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। यहू आहाब के पुत्रों को सिंहासन के लिए यहू के साथ युद्ध करने का अवसर दे रहा है। 70 पुत्रों में से एक भी यहू का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल के धर्मवृत्त भी अपनी जान बचाने के लिए यहू की ओर हो जाते हैं और आहाब के 70 पुत्रों के सिर काट देते हैं। हम दूसरे राजाओं के पुस्तक 10 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, तब आहाब के घराने के जितने लोग इज़राइल में रह गए उन सबों को और उसके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे उन सबों को यहू ने मार डाला, यहाँ तक कि उसने किसी को जीवित न छोड़ा। मेरे प्रियो, यहू यहूदा के राजसी सदस्यों की हत्या करता है। तब हम आगे देखते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 12 से 14 पद में, तब वह वहां से चलकर शोमरोन को गया और मार्ग में चरवाहों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुंचा ही था कि यहूदा के राजा अहियाह के भाई येहू से मिलने, और जब उसने पूछा तुम कौन हो, तब उन्होंने उत्तर दिया हम अहज्याह के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाता के बेटों का कुशल क्षेम पूछने को जाते हैं। तब उसने कहा इन्हें जीवित पकड़ो, सो उन्होंने उनको जो 42 पुरुष थे जीवित पकड़ा और ऊन कतरने के स्थान की बावली पर मार डाला, उसने उनमें से किसी को न छोड़ा। मेरे मित्रों, आहाब के परिवार का वध करने के बाद येहू सामरिया के सिंहासन पर अधिकार करने चला। उसने यहूदा के राजा अहज्याह के पर पुत्र भांजे भतीजों का भी वध कर दिया, परंतु उनमें से एक जैसे तैसे बच गया, वह शाऊल का वंशज था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, जब वह वहां से चला तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा मेरा मन तो तेरी ओर निष्कपट है, सो क्या तेरा मन भी वैसा ही है? यहोनादाब ने कहा हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया और वह यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा कि मेरे संग चल। मेरे मित्रों, सामरिया की ओर अग्रसर उसकी भेंट रकाबी यहोनादाब से हुई। उसने उससे पूछा तू मित्र है या वैरी? यहोनादाब रकाबियों का मूल पुरुष था जिसका उल्लेख यिर्मयाह ने किया है। वह निस्संदेह एक प्रभावशाली मनुष्य था। वह संपूर्ण मन से येहू की आहाब विरोधी नीति के पक्ष में था। वह येहू के रथ में प्रकट होकर अपना सहयोग प्रदर्शित करना चाहता था। तब हम आगे देखते हैं येहू द्वारा बाल पुजारियों का वध। दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है, तब येहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा आहाब ने तो बाल की थोड़ी सी उपासना की थी, अब येहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा, इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ, उनमें से कोई भी न रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है, जो कोई न आए वह जीवित न बचेगा। येहू ने यह काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नाश करने के लिए किया। मेरे मित्रों, येहू का अगला काम था कि उसने झूठा निमंत्रण देकर सब बाल के पुजारियों को एकत्र किया कि वह बाल को एक विशाल बलि चढ़ाना चाहता है। येहू के मन में तो बाल उपासना का विचार भी नहीं था। जब सब बाल पुजारी एक जगह पर इकट्ठे हो गए तब उसने उन्हें मरवा दिया। बाल को बलि चढ़ाना एक चाल थी और बाल के देवता के पुजारी उसमें फंस गए। येहू यरोबाम के पाप का अनुसरण करता है। यह तो सच है कि येहू ने बाल पुजारियों का वध किया, परंतु उसने परमेश्वर के भविष्य वक्ताओं को भी स्वीकार नहीं किया। हम दूसरी राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं, तो भी नाबाद के पुत्र यरोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार करने अर्थात बेतेल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा की, उससे येहू अलग ना हुआ। मेरे मित्रों, येहू यरोबाम द्वारा स्थापित बछड़े की पूजा करने लगा और उसने बाल और सिदोनियों के देवताओं को दंडवत नहीं किया। उसने बछड़े की पूजा की जो मिस्र से आई थी। मित्रों, येहू परमेश्वर की ओर उन्मुख नहीं था, परंतु क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रति जलन दिखाई थी परमेश्वर ने उसे सांसारिक प्रतिफल दिया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, और यहोवा ने येहू से कहा इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और आहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार वर्ताव किया है, तेरे पर पोते के पुत्र तक तेरी संतान इसराइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। ध्यान दीजिए, यद्यपि येहू एक पार्श्विक प्रवृत्ति का मनुष्य था, परमेश्वर मनुष्य के क्रोध द्वारा ही अपनी स्तुति करवाता है। हम देखते हैं अरामी हजाएल इसराइल का विनाशक होता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है, उन दिनों यहोवा इसराइल को घटाने लगा, इसलिए हजाएल ने इसराइल के उन सारे देशों में उनको मारा। मेरे प्रियो, यहाँ क्या हो रहा है? उत्तरी राज दासत्व में जाने की तैयारी में है। अब से आगे उनका पतन होगा और वे अंततः नष्ट हो जाएंगे। वे अश्शूरों के दासत्व में ले जाए जाएंगे। येहू की मृत्यु के साथ ही मित्रों यहाँ पर अध्याय का अंत होता है। उसने 28 वर्ष तक इसराइल पर राज्य किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं इस अध्याय में कि बहुत खून खराबा हुआ है और ऐसा लगता है कि यह बाइबल के वचन पूर्णतः खून खराबे के हैं। लेकिन इस बात को मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर किसी भी पापी को या किसी भी दुष्ट को जो उसके खिलाफ है नहीं छोड़ता, क्योंकि वचन में हमने बार बार पढ़ा है कि परमेश्वर धोखा नहीं खाता, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता। जी हाँ, आप इस बात को जान ले कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हर एक को एक दिन उसका हिसाब देना होगा। मेरे प्रिय, आज आपके लिए और मेरे लिए मौका है कि हम परमेश्वर के निकटता में आकर अपने गलतियों को मान ले, उसे क्षमा मांगे और उससे कहें, प्रभु मैं ये जीवन जीना नहीं चाहता हूँ, मैं एक बदला हुआ जीवन जीना चाहता हूँ, प्रभु आप मेरी मदद करें। जी हाँ, जब आप ऐसा कहेंगे परमेश्वर अवश्य ही आपके लिए सामने आएंगे, आपकी सहायता और मदद करेंगे। निर्णय आपको लेना है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में एक चेतावनी को देखा है, अपने जीवन में एक नए लेशन को देखा है और निश्चय ही आप इसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष एवं सहायता प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हे पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। हे पथिक तू अधिक दूर